पृष्ठ संख्या 130। किंतु जिस तरह का भारतीय संविधान उन्होंने बनाने में संविधान सभा का मार्गदर्शन किया, उसकी विगत 45 से 46 वर्षों के काम करने के ढंग से जातियों के बंधन ढीले पड़े हैं। यह भी दूसरी सच्चाई है। समाज सुधारक और उनकी नियति। गौतम बुद्ध भारतीय समाज सुधारकों में सर्वश्रेष्ठ और प्रथम पुरुष थे। कोई भी समाज सुधार का इतिहास उन्हीं के नाम से शुरू होगा। उनकी महान उपलब्धियों की उपेक्षा करके कोई सुधार आंदोलन का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। उन्होंने आर्य समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वे सभी के प्रिय थे। वे बहुतों के हित रक्षा हेतु पैदा हुए थे। बहुतों की खुशी विश्व की बाधाओं से मुक्ति का आसान मार्ग सिखाना ही उनका धर्म था। उनके विचार देश की सीमा लांघ कर बाहर गए, क्योंकि उन विचारों में तेजस्विता थी। जब वे पैदा हुए तो भारतीय समाज आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक पतन की ओर था। मद्यपान और जुआ खेलना प्रत्येक प्राणी का नियम सा बन गया था। विराट नाम के राजा के दरबार के बगल में ही जुआ घर था, और समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति वही माना जाता था जो इस विद्या में निपुण हो। उनके दरबार में कंक नाम का व्यक्ति सिद्धहस्त जुआड़ी था। वह जुआ में सर्वस्व हार कर अपनी पत्नी दमयंती के साथ जंगल में जाकर रहने लगा और भिक्षाटन से जीवन यापन करने को मजबूर था। महाभारत के पांडवों के राजा भी जुआ में अपने भाइयों सहित अपनी पत्नी द्रौपदी तक को हार गए थे। जुआ के साथ ही मनुष्य की प्रतिष्ठा और धन शक्ति का माप होता था। इसी तरह मद्यपान भी एक हिस्सा था। ब्राह्मणों के लिए सोमरस का पान करने की अनुमति थी, जो बलिदानी शराब थी। सुरा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों तक सीमित थी। शूद्रों के लिए इसका पान करना प्रतिबंधित था। असुरों के देवता शुक्राचार्य एक बार इतना पी लिए कि जीवन दान देने वाला मंत्र ही भूल गए। देवों द्वारा संग्राम में मारे गए असुरों को वह पुनर्जीवन दिया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आर्य स्त्रियों में सुरापान आम बात थी, और इसी तरह वैवाहिक मामले भी विकट स्थिति में थे। उन्होंने हरिवंश पुराण और महाभारत आदि के उद्धरण देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि आर्य समाज में पुरुष स्त्री के अयोनि संबंध भी प्रचलित थे। उनके अनुसार योनि का अर्थ घर के भीतर और अयोनि का अर्थ घर के बाहर से था। ऋषिगण एक प्रकार का यज्ञ करते थे। उसमें यदि स्त्रियां पहुंचती थीं और यदि उसमें ऋषियों के साथ साहचर्य की इच्छा हो, तो यज्ञ को साक्षी मानकर स्त्रियों के साथ साहचर्य की सामाजिक अनुमति थी। गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान यही है कि आर्यों के इस कलुषित सामाजिक जीवन को शुद्ध किया। वे एक पवित्र, निर्दोष जीवन जीकर दूसरे के लिए दृष्टांत बनकर ऐसा ही जीवन जीने के लिए सभी को तैयार किया, और इस तरह एक निर्मल सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। ब्रह्मजल सत्ता के आधार पर जीवन जीने की उन्होंने एक आचार संहिता बनाई और जीवन का एक नया दर्शन खड़ा किया। वे न केवल अपने जीवन को उसी आधार पर जीना चाहते थे, बल्कि समाज के नर नारी को वैसे ही नैतिक जीवन जीने का आदेश दिया। उनके विचार केवल नकारात्मक और रचनात्मक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता पर प्रहार किया। एक, डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, कॉमा वॉल्यूम 3, कॉमा पृष्ठ संख्या 167। पृष्ठ संख्या 131। यज्ञ धर्म का माध्यम नहीं है। बुद्ध ने अपने विचारों से यज्ञ में होने वाले बलिदान पर घोर आक्रमण किया। उन्होंने जाति प्रथा पर मरणांतक प्रहार किए। आज की तरह जाति प्रथा उन दिनों स्टैटिक नहीं थी। अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय भोजों पर जैसी पाबंदी नहीं थी, किंतु विषमता जातिवाद से ही पैदा हुआ और वह उन दिनों भी काफी रसा बसा था। इस जातिगत विषमता पर गौतम बुद्ध ने करारा हमला किया। अम्बद्ध्य सूत्र में उन्होंने ब्राह्मणी सत्ता पर कारगर हमला किया। उन्होंने जिन चीजों का प्रचार किया उसे व्यवहार में भी उतारा। वे केवल ब्राह्मणों की सत्ता पर हमला ही नहीं करते थे, अपितु अपने छात्र संघ में तमाम शूद्र और अतिशूद्रों को भिक्षु रूप में ग्रहण किया और भिक्षुओं का बुद्ध धर्म में वही स्थान था जो ब्राह्मणों का हिंदू धर्म में था। उन्होंने शूद्रों का स्तर ऊंचा करने के साथ महिलाओं के भी स्तर को ऊंचा किया। संन्यास से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। महिला और शूद्र दोनों को संन्यास से रोक थी। उन्होंने भिक्षु की ही तरह स्त्रियों को भी भिक्षुणी का दर्जा देकर उनके लिए भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। आर्य परंपरा में शिक्षण और शैक्षिक कार्य केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तक आरक्षित थे। तोडरीज डेविटस के शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की अनुमति होगी। प्रत्येक व्यक्ति यदि उसमें थोड़ी भी क्षमता है तो अध्ययन के लिए स्वतंत्र होगा। यदि वह अध्यापन करता है तो सभी को शिक्षा दे, किसी को पीछे न ढकेले और किसी के लिए शिक्षा का द्वार न बंद करे। यह उनके लोहिका सूत्र में लिपिबद्ध है। डॉक्टर अंबेडकर को इस बात से काफी पीड़ा थी कि बौद्ध धर्म जैसा जागृत धर्म जिसने भारतीय समाज को समता के धरातल पर लाने की कोशिश की, वह आसपास के देशों में तो जिंदा है लेकिन उसका प्रभाव भारत में कम हो गया। उनके अनुसार मुसलमानों के आक्रमण के साथ भारत में बुद्ध का प्रभाव जाता रहा। भारत आने से पूर्व बैक्टीरिया, पार्थिया, अफगानिस्तान, गांधार, चीन, तुर्किस्तान, सभी जगह बुद्ध धर्म था। वहां मुसलमानों ने इसे खत्म किया। इस्लाम धर्म के साथ ही बुत शब्द आया। वे बुत परस्ती के खिलाफ थे। जहां कहीं भी बुद्ध प्रतिमाएं थी पहले उन्होंने उसको नष्ट किया और वे विंसेंट स्मिथ को उद्धृत करते हुए कहते हैं, मुसलमानों के उग्र प्रहार से जो अंधविश्वासी हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा बर्बर था, भारत के अनेक राज्यों से बुद्ध धर्म का अवसान हो गया। किंतु वे स्वयं प्रश्न करते हैं कि बुद्ध और ब्राह्मण धर्म दोनों पर ही मुसलमानों ने समान रूप से प्रहार किया, फिर केवल बौद्ध क्यों नष्ट हुआ और हिंदू धर्म नहीं हुआ। उनके अनुसार जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो भारत में राज्यों की मदद हिंदू धर्म को थी। बुद्ध धर्म पर मुसलमानों के ही साथ हिंदू राजाओं ने भी वैसे ही सांघातिक प्रहार किए। इन दोनों के पौरोहित्य पर आक्रमण हुए। परिणाम स्वरूप आत्मरक्षार्थ हिंदू राजाओं के प्रहारों से बचाव हेतु अधिकांश बौद्ध मुसलमान हो गए। भारतीय राज्यों में सिंध पर ही मुसलमानों का प्रथम आधिपत्य हुआ। संयोग से राजा वहां शूद्र था, किंतु उसका मंत्री जिसके हाथ में संपूर्ण राज शक्ति थी वह दाहिर नाम का ब्राह्मण था। उसने शूद्र राजा को हटाकर अपनी सत्ता कायम कर ली और 712 ईस्वी में इन्ने कासिम के आक्रमण के समय ब्राह्मण धर्म की आंशिक रक्षा की। वेनसांग के अनुसार पंजाब पर क्षत्रिय राजा का राज्य था जो बौद्ध था। एक, डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, कॉमा वॉल्यूम 3, कॉमा पृष्ठ संख्या 222। पृष्ठ संख्या 132। आठ सौ अस्सी ईस्वी तक पंजाब पर इस वंश का राज्य था, किंतु ब्राह्मण राजा लालिया ने बगावत करके क्षत्रिय बौद्ध राजा से पंजाब का राज्य छीन लिया और 880 से 1021 ईस्वी तक वहाँ का शासक बना रहा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मुस्लिम आक्रमण के काल में लगभग 800 से 1000 ईस्वी तक बौद्ध क्षत्रिय राजाओं के हाथ से बंगाल से लेकर पंजाब राजस्थान तक राज सत्ता ब्राह्मण धर्मवादी राजाओं के हाथ में आ गई और इस तरह राज सत्ता के लिए ब्राह्मण मतावलंबी क्षत्रिय राजाओं व मुस्लिम आक्रमणकारियों के बीच जंग तो हुई, किंतु बौद्ध धर्म पर दोनों ने समान रूप से आक्रमण किया। बल्कि देशी हिंदू धर्मावलंबी राजाओं का प्रहार ज्यादा गंभीर है, जिसके कारण बड़ी संख्या में भारत की बौद्ध मतावलंबी आबादी अपना धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म को मानने वाली हो गई। राज्यों के भीतर भी बगावतें हुई। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया था। मौर्य साम्राज्य के विघटन के दिनों में पुष्यमित्र शुंग नाम के सेनापति ने बगावत की। शुंग गोत्र को लोग सामवेदी ब्राह्मण कहते थे। वे सोम और पशु बलि में विश्वास करते थे। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म से च्युत कर ब्राह्मण धर्म स्थापित करने का संकल्प किया। उसने राज्यारोहण के साथ ही अश्वमेध यज्ञ किया तथा वैदिक रीति रिवाज प्रारंभ किए, जिनका सर्वथा लोप हो गया था। उसने उस व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की, जो एक बौद्ध भिक्षु का सर उतार कर उसके दरबार में प्रस्तुत करे। उसने मनुस्मृति को ही अपने राज्य में कानून की संहिता घोषित किया। उसके जमाने में घोषणा हुई कि ब्राह्मण ने स्वयं मनुस्मृति मनु को दिया है, इसीलिए यह ब्रह्मा की दी हुई संहिता है और प्रत्येक जन पर लागू है। इस तरह पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विपरीत ब्राह्मण भी राजगद्दी पर बैठ सकता है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर नए सिरे से भारतीय समाज में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म पुनर्स्थापित किया।